हम थोड़ी सी आत्माओं को चुना है। गीत भी बोल रहा था कि भगवान की नजर पहले पहले बच्चों पर पड़ी। अब इतनी ही बात कितना हमारा पद्मा पदम सौभाग्य बताती है कि भगवान ने आपको चुन लिया। जब हम सोचते हैं भगवान ने हमको चुन लिया, फिर अपनी ओर देखते हैं तो कभी कभी ख्याल आता है हमें भगवान ने चुन लिया। हाँ, हमें तो आसपास के लोग भी कुछ नहीं समझते, हमें भगवान ने चुन लिया। शीशे में जाकर देखते हैं तो और ही क्वेश्चन पैदा हो जाता, भगवान को और कोई नहीं मिला। अच्छा, तो इसलिए वैसे तो भगवान ने चुना है। वो कहते हैं कि मैं आपका आज का रूप नहीं देखता हूं, ये जन्म भी नहीं देखता हूं, क्योंकि भगवान सबकी जन्म पत्री जानता है। वो कहते हैं कि आज जो कुछ आप हैं, हर आत्मा वो अपना पार्ट बजाते बजाते ड्रामा के अंदर कोई कहीं आ गई, कोई कहीं आ गया। लेकिन मैं देखता हूं कि शुरू में ये कौन कौन थे ऐसे जो देवता बने थे, है ना। तो कुछ आम व्यक्ति भी ये सोचता है किसी चीज को लेते हुए, मिट्टी को ही ले लो, कि कोई खास चीज बनानी है तो उसके लिए खास मिट्टी ढूंढता है ना। इसलिए भगवान हमारा आदि और अनादि देखता है। तो आपको भी कभी अपने ऊपर डाउट आ जाए, है ना, क्योंकि देवता हमारा संपूर्ण स्वरूप है और आज हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है, तो कभी कभी ख्याल आ सकता है। जब तो आप पूरे नशे में होते हैं, अपने स्मृति में होते हैं, तब नहीं आता। जब किसी दूसरे को सुना रहे होते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं आता, उसको ही कह रहे होते हैं कि तू देवता था। लेकिन कभी इस धरती पर कुछ 19-20 हो जाता है, खास तौर पे जिस परिवार में हम रहते हैं, या कोई शारीरिक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि आज मेरा क्या है, क्या कहते हैं, हैं, वो नहीं है जो होना चाहिए। तो उस समय ये याद रख ले कि हमें भगवान ने चुना है। मनुष्य भी कोई चीज लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, हमें तो भगवान ने चुना है। और भगवान कहता है ऐसी नौबत क्यों आए। रोज ही जब दिन चढ़े, ताकि हमें ऐसा मौका ही ना मिले, तो ये याद कर ले कि हमें स्वयं परमात्मा ने चुना है। किस लिए चुना है, किस लिए चुना है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान करता ही क्या है कि नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी, मनुष्य को देवता बनाता है। अच्छा, भगवान ने चुन लिया, अब हम देवता बने बगैर रह सकते हैं। अगर आप चाहें भी कि मैंने नहीं बनना, अच्छा हो सकता है कभी कभी आ जाए, लेकिन भगवान आपको बना के ही रह छोड़ेगा, तो ये भी पक्की बात है। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि जीवन की नैया कर दे राम हवाले। बाबा तो कहते हैं हे राम भी ना कहो, वो गांधी जी ने कहा था शरीर छोड़ते समय, परंतु राम हवाले मैंने बाबा के हवाले। अब किसी को किसी ने चुन लिया और अपनी नैया में भी बिठा लिया तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे या जरूर पहुंचेंगे, या ये समझ ले हम पहुंचे हुए हैं, है ना? कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो एक दो साल के बाद वो सोचना शुरू कर देता आगे का, मैं क्या करूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा आदि आदि। तो बाबा कहता है हमको किस चीज के सपने आने चाहिए? हाँ, एक होते हैं नकली सपने, ये तो सपनों में देखता रहता, लेकिन एक होता है कि सपना जो है वो लास्ट चीज है, है ना? एक तो होती है बुद्धि, अच्छा एक होता है ख्याल, फिर कहते हैं ख्वाबो ख्याल, संकल्प और सपन। तो हमको किस चीज के सपने आने चाहिए? तो ब्रह्मा बाबा जिनके पांडव भवन में हम बैठे हैं, बाबा का कमरा तो आप देखते ही होंगे, उसमें ब्रह्मा बाबा जब बैठते थे तो जहां बाबा का लगा हुआ है चित्र, वहां लक्ष्मी नारायण का लगा होता था और वो उसको देखते रहते थे। नेचुरली कमरे में लगा हुआ तो देखना ही है, और उनका टांग जो है चौकड़ी मार के ऐसे हिलता रहता था कि वो देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण है, मैं जब बनूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे महल बनाऊंगा, कैसे प्रजा आएगी, क्या राज्य चलेगा, कितने राज्य चलेंगे, कितनी गद्दियाँ मुझे मिलेंगी, कैसे कैसे होगा। इसको कहते हैं सपने देखना, अर्थात अपने फ्यूचर को सोचना। आज की दुनिया कौन सा फ्यूचर सोच रही है? आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो बीके को छोड़कर, वो क्या सोचते हैं बेचारे, पता नहीं, पता नहीं। और हमको ना सिर्फ पता है बल्कि निश्चय है, और उसमें सोने पर सुहागा कि हम कल्प कल्प बने हैं और कल्प कल्प बनते रहेंगे, और ये भी हम खाली अपना पार्ट रिपीट कर रहे हैं। जिसकी जिसकी नैया का खोया भगवान हो, ये शोरी है कि नैया पार जाएगी। भगत तो कहते हैं मेरी नैया पार कर दे, हम तो बैठे हैं। तो उसको हर वक्त कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए, और हर वक्त देखता रहना चाहिए जो पीछे रह गया वो तो गया, हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अब बाबा ने हमें यात्रा का स्टेशन भी बता दिया कि आप कहां तक पहुंचे। तो आपके ख्याल में हम अपनी यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं? श्री राधे कृष्ण का राज्य आने में कितनी की देर है? पहले तो कुछ जब हम ज्ञान में आए थे तो थोड़ा बहुत सोचते थे अभी टाइम है, बाबा भी कहते थे अभी थोड़ा टाइम है संपन्न संपूर्ण बनने में, अब कितनी की देर है? आप दुनिया के हालात भी देखते हैं, बाबा की मुरलियां भी सुनते हैं, यज्ञ को भी देखते हैं क्या हो रहा है यज्ञ में, कि बारी बारी कहाँ सज्जू की तैयारी में जा रहे हैं। जिस दिन बाबा का टर्न होता है कोई बाबा की मुरली आती है वीडियो, जैसे हमने पीछे देखी और फिर देखेंगे 30 तारीख को, तो क्या दिखता है उसमें? हाँ, और तो सब कुछ दिखता ही है, मुरली तो सुनते ही हैं, और क्या दिखता है कि ये पिछली मुरली में थे, आज नहीं है, है ना? अच्छा, फिर देखते हैं कौन कौन नहीं है, तो धीरे धीरे फिर धरती पर देखते हैं यहाँ, फिर कहते हैं कितने के बचे हैं। अच्छा, क्यों? अब स्थापना लगभग पूरी हो गई है, जितने बाबा को चाहिए शुरू करने के लिए उतने हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे शुरू करने के लिए जितने चाहिए वो मिल जाए, तो फिर आगे आप पे गाड़ी चलती रहेगी। तो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि जब नैया जो है लगभग किनारे लग गई है और हमें खाली एक कदम ही उससे उतरना है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि टाइम टेबल तो हर एक बनाता है ना, भाई दिन शुरू होता है, पता होता है सारा दिन पड़ा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है तो टाइम टेबल बनता जाता है। अगर कुछ काम रह जाए तो फिर सोचते अब तो टाइम टेबल बहुत जल्दी जल्दी करो, पूरा करना है, इसलिए ऑपरेशन आता है। अब हमें कौन सी स्टेज को धारण करना, ताकि हम भले इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे हर एक का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब टोटल समय आ जाएगा तो उस समय तो फिर सबको जाना पड़ेगा, और वो बड़ा जो है परिवर्तन का समय वो दिख रहा है, इसलिए क्या करना चाहिए? तो जितना एक समय बचा होता है उसी हिसाब से स्पीड होती है, अभी थोड़ा समय पड़ा है। और बिल्कुल हो कि भाई अब समय आ गया तो अलग बात हो जाती है। आपको सामने दिख जाए कि ट्रेन तो आ रही है और बस प्लेटफॉर्म पे आने वाली, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि सारा सामान सामून इकट्ठा करके देखने लगेंगे कि ट्रेन कब आए और मेरा डिब्बा कब आए, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये तो बड़ा मामला है, ये तो फाइनल यात्रा है, तो इसमें हमें क्या करना है? फिर वो होना है। अच्छा, आप सोचेंगे हम अपनी आज की स्थिति को देखते हैं तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है, या कुछ मुश्किल है, या कोशिश करेंगे, लेकिन जिसने हमको चुना है, जिसने हमारी नैया को पार लगाना है, उसने ये भी तो प्लान किया हुआ होगा कि जब ये नैया से उतरेंगे तो अपने अपने टाइम पे ठीक उतरेंगे। इसलिए जैसे एक साधारण काम में भी हम अपनी स्पीड को, अपनी स्थिति को, रेडीनेस को बदल लेते हैं, अब हमको खाली क्या करना है, ये पक्का पता है कि उसने हमारे अंदर वो शक्ति दी हुई है पहले से, लेकिन अब हमने उसको यूज़ करना है ना। जैसे सेना वाले होते हैं तो सेना वाले जैसा सामने युद्ध चल रहा होता है उसके अनुसार अपना शस्त्र यूज़ करते हैं। अगर कोई सेना वाला थोड़ा केयरलेस हो, सामने से दुश्मन आ रहा है, ज़रा दूर है और वो पिस्टल निकाल के चलाना शुरू कर दे, तो पिस्टल की गोलियां भी जाएंगी और वो तो पिस्टल तो उस तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। दुश्मन नज़दीक आ जाए फिर वो सोचे नहीं नहीं पिस्टल नहीं, फिर वो तोप चला दे, तो तोप का गोला उस दुश्मन के परे चला जाएगा और दुश्मन उसको गले से पकड़ लेगा, हथियार गलत यूज़ कर लिया ना। इसलिए बाबा ने हमको सब चीज़ें बताई हुई हैं, अभ्यास भी कराया हुआ है और स्वयं भगवान धरती पर क्यों आए? हमको ले जाने के लिए, पहली बात है ना। तो ये तो पक्का है कि जब वो आए हमको ले जाने के लिए, तो ले जाने के लिए पहले तो साकार में हमको अच्छी तरह से अपने जैसा जैसे हम हैं ऐसे करके बताया। फिर धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े छोटे से बड़े हो जाते हैं तो खुद अव्यक्त हो गए कि देखो अब आपको मेरे से मिलना है, तो साकार में नहीं थोड़ा ऊपर आओ। और कितने वर्ष तक अव्यक्त अभ्यास करवाया, ज़्यादातर हम बाप दादा से भी मिल सकते हैं क्योंकि शरीरधारी हैं, फरिश्ता बन गए। और बीच बीच में ये भी कह दिया कि आपको बिंदी भी बनना है, आप हैं ही बिंदी, तो इसलिए ये अभ्यास कराते रहे। अब हमको क्या करना है कि अपना विधि और स्पीड को बदलना है। तो विधि क्या है? तो विधि यही है कि अब हमको नीचे से ऊपर जाने वाला समय नहीं है, है ना। अब बाबा देखो, अगर ज्ञान को देखें तो बाबा पहले कहता रहा है बच्चे तुम तेज तेज चलो, फिर कहा दौड़ो, है ना, फिर कहा गैलप करो और फिर कहा उड़ो, है ना। ऐसे ही पहले कहा एक का 10 पाओ, फिर एक का 100, और आजकल क्या है एक का पद्मा पदम। तो चेंज कर दी विधि। अच्छा, इसी प्रकार से अब हमको एक ही तरीका है कि अगर आपने सोचा कि सड़क के रास्ते से दौड़ेंगे भी, बहुत तेज स्पीड से भी जाएंगे तो नहीं पहुंच सकते। सड़क के रास्ते से आप 1000 मील की कार भी चला लो, उड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि इसमें इंजन ही वैसा है। और सड़क के रास्ते से रुकावटें भी आएंगी, तो जो उड़ने वाली इंजन होती है वो सीधा उड़ती है। इसलिए पहले तो बाबा ने कहा आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने पहुंचना है तो हमारी उड़ने वाली मशीन होनी चाहिए, अर्थात उड़ती कला होनी चाहिए, चढ़ती कला, दौड़ती कला आदि नहीं। फिर उड़ के जाएंगे कहाँ? तो फिर कहते हैं जी कि पहले सूक्ष्म वतन में जाना है। अच्छा, अब पहले आप उड़े सूक्ष्म वतन में जाएं, आपके पास मशीन भी है पर आप कभी उसको चलाते ही नहीं, या कुछ और अड़चन आ जाती है, इसलिए भगवान ने और तरीका बताया। वो कहते हैं ऊपर से नीचे आओ, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको पता है ऊपर से नीचे आने में ना तो मेहनत लगती है, आप ऊपर के वासी हो गए, नीचे आए तो बहुत आसान हो जाता है। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें बोरियां भरनी पड़ती थी किसी चीज़ से, तो नीचे से बोरी भर के ऊपर नहीं डालते थे, वो मटेरियल को ऊपर ले जाते थे और वो नीचे आके बोरी भरता था, अर्थात ऊपर से नीचे आता था तो कुछ उठाना नहीं पड़ता था। अभी आप देखिए कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, इस साकार दुनिया में हम क्यों हैं? इसलिए हैं कि हमारे साथ हमारा शरीर है, और वो जो शरीर है भारी है और 5 तत्वों का बना हुआ है। अब शरीर में बैठे बैठे आप उड़ान तो कर सकते हैं बुद्धि से, लेकिन कितने भी कर लेंगे आएंगे तो शरीर में। अच्छा, अब बाबा ने हमको सिखाया कि देह भान को छोड़ दो। अच्छा, जब भी हम बुद्धि से मन से ऊपर जाते हैं देह भान तो छोड़ते हैं, लेकिन हमारा हेडक्वार्टर तो देह है, फिर घूम फिर कर वहाँ आ जाते हैं, इसलिए अब ये तरीका तो चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है फिर? देह भान को छोड़ने का अभ्यास तो हो गया, हमें ऊपर से नीचे आना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा अवतरित होते हैं, ठीक है, जिस वक्त अवतरित होते हैं तो इस दुनिया में होते हैं, शरीर में होते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बाप दादा के अवतरण से हमें भी पता है कि बाप दादा ऊपर से आए हैं और अपना पाठ पूरा करके ऊपर चले जाएंगे। उनको ना तो देह है, ना देह का कोई आकर्षण है, तो जिसको कहते हैं कि वो अवतरित होके अपना पाठ बजाते हैं न्यारे प्यारे होकर, अब हमको भी पाठ तो बजाना ही है। बाप दादा तो इंडिपेंडेंट हैं, पर हमारा थोड़ा बहुत हिसाब पड़ा हुआ है, इसलिए हम सोचे हैं हिसाब चुकतू कर लें, वो तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब जैसा समय है इसलिए बाबा ने कहा है फरिश्ता रूप धारण करो। अच्छा, फरिश्ता रूप धारण करने के लिए पहले धरती पर अभ्यास चाहिए, यहाँ पर। वो कैसे, अगर कोई कार स्टार्ट नहीं हो रही, खड़ी हो गई है, तो उसको आप धक्का लगवाते हैं। जब आप उसको धक्का लगवाते हैं तो तीन चार लोग तो चाहिए होते हैं धक्का लगाने के लिए। अच्छा, अब अगर आप उस कार का सिर्फ इंजन स्टार्ट कर दो फिर धक्का लगवाओ, फिर कितने लोग चाहिए होते हैं, एक व्यक्ति भी चला लेता, क्योंकि अब उसके अंदर वाइब्रेशन आ गया, हल्की हो गई है, वही कार, धक्का भी लगना है, खाली उसके वाइब्रेशन उसका हल्का हो जाता। इसी प्रकार से अगर हम अपने फरिश्ते रूप को इमर्ज करके काम करें, जैसे हम वैसे भी किसी वक्त कोई काम की ज़रूरत होती है उसके अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो आपको कुछ सीढ़ी चढ़ना है, आप कहते हैं बड़ी ऊंची सीढ़ी है, कोई कह दे दादी जानकी ने ये सीढ़ी चढ़ी थी भाई, तो आप कहते हैं दादी जानकी मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, करते हैं ना। अच्छा, इसी प्रकार से किसी के पीछे सांप लग जाए, वो चल भी नहीं पाता तो कितनी तेज भागता है, तो शक्ति तो है ना हमारे अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि वो शक्ति तो सांप दिखता है और ये समय नहीं दिखता कि भाई कब ये जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। इसलिए पहले तो हम अपने शरीर में रहते हुए ही जो भी काम करें अपने फरिश्ता रूप धारण करके करेंगे तो हल्का हो जाएगा। ये आप अनुभव करके देखिए कि बहुत आसान तरीका है। अच्छा, जो ही आपने समझा मैं भारी हूँ तो आप भारी, फरिश्ता हूँ तो हल्का। वैसे भी कोई खुशी की खबर आ जाए तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। अपने डांस देखा होगा गुजरातियों का, मोटे भी डांस कर रहे हैं क्योंकि खुशी में है, शरीर का पता नहीं लगता। इसी प्रकार से अगर कोई खराब खबर मिल जाए कि तेरे को तो कैंसर है, अभी बेचारा अब तक भी कैंसर था, उसके बाद उसके चाल देखो, पैर चल ही नहीं पाएगा, अरे भाई चलो चलता हूँ, तो ये हो गया ना, तो ये तो हो गया शारीरिक। लेकिन अगर हम बुद्धि से, फरिश्ता रूप तो है हमारा, उसको धारण कर लें, जैसे मैंने आपको मोटर स्टार्ट की एग्जांपल दी, एक तो अब यहाँ हल्के होने का आपको अभ्यास हो जाएगा। जब यहाँ हल्के होने का अभ्यास हो जाएगा कि मैं फरिश्ता शरीर में हूँ, तो फिर आपको बाबा ने कहा हुआ है कि छोटा छोटा शरीर को न्यारे होने का अभ्यास करना है, लंबा नहीं करना, 2 मिनट। जैसे मैं यहाँ से अशरीरी समझो मेरा शरीर छूट गया है तो भी तो मैं जाऊँगा ही, तो हम खुद छोड़ के 2 मिनट के लिए, ये तो तसल्ली है, 2 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, आप कर सकते हैं, आप करिए, तो आप देखेंगे आसान है। अच्छा, फिर यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ बैठे बैठे मैं सोचता हूँ मैं वहाँ बैठ जाऊँ, बैठा मैं यहाँ हूँ, तो आप कर सकते हैं ना। कभी कभी हम फोटो बनाते हैं तो व्यक्ति जो होता है स्टेज पर भी होता है, ऑडियंस में भी होता है, तो उसको निकाल देते हैं, इसी प्रकार से ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं, एक शरीर में हम बैठे हैं, चलो एक मिनट के लिए वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो आप न्यारे तो हो गए ना। ऐसे करते करते फिर आप, बाबा कहता है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाइए, तो आपको फील होगा कि मैं काफ़ी समय तक फरिश्ता रूप में रह सकता हूँ। अच्छा, जब ऐसा हो जाए तो फिर रिवर्स कर दीजिए कि फरिश्ता रूप से, जैसे हमारे बाप दादा फरिश्ता रूप में हैं, हमारे पूर्वज दादियाँ भी फरिश्ता रूप में हैं, हम भी जब बुद्धि लगाते हैं तो फरिश्ता रूप में बात जाते हैं, अमृत वेले भी जाते हैं, तो वो हम सोचें कि हम फरिश्ता रूप से अब नीचे आए, अर्थात चाहे हम सारा दिन नीचे रहते हैं लेकिन आए फरिश्ता रूप से हैं, तो हमारी बुद्धि जो है, हम कॉन्शियसनेस, वो वहाँ लग जाएगी कि वहाँ से मैं आया हुआ हूँ। तो फिर आपको एक ख़ास तौर पर विश्वास होगा अपने ऊपर, अगर मेरे को शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अभ्यास है। वरना क्या होगा कि हम सोचेंगे कि उस वक़्त मैं कर लूँगा, तो बाबा कहता है नहीं, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया उस वक़्त। फिर बाबा ने बताया हुआ है, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम धाम में निवासी हूँ, निराकार हूँ, अब मैं उड़ती हूँ, बोलते रहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा हुआ गंगा राम नल पर बैठा और कह रहा है, फिर होगा नहीं। इसलिए अपनी तैयारी हर एक को स्वयं की स्वयं करनी है। अच्छा, ये तो हो गई मोटी बात, अब आप आइए तरह सूक्ष्म बात पर। अब बाबा कहते हैं कि डबल लाइट बन के आप फरिश्ता बन सकते हैं, ठीक है, एक लाइट तो आप हैं ही आत्मा, ठीक है, आत्मा तो हल्की है। अच्छा, आत्मा हल्की है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है हमारा, वो है कि हम बंदरों में हैं, है, पंछी पिंजरे में है, आत्मा रूपी पंछी पिंजरे में है। बंधन कौन कौन से हैं सबको पता है, पहला बंधन देह का, फिर देह की इंद्रियों का, देह के संबंधों का, देह के जो चीज़ें से हमारा आकर्षण है उसका, पदार्थों का। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आप संबंध संपर्क में आते हैं तो भी बॉडी कॉन्शियस बॉडी वालों से आते हैं, इतना ध्यान रखें हर वक्त कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, तो शारीरिक में आते आते क्योंकि बंधन होता है तो सोच भी लेंगे आप तो नहीं होगा, वो बंधन जब तक ख़त्म नहीं होगा। करते करते फिर बाबा कहता है कि फाइनल बात आती है पुराने संस्कार, बंधन में भी हम क्यों हैं, एक तो पुराने संस्कार, एक पुराने हिसाब किताब, हम कुछ भी कोशिश कर लें, कहीं भी भाग जाएं, हमारे हिसाब किताब अगर हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगे, तो हम किसी चीज़ से छुटकारा पाकर भाग कर नहीं छूट सकते। पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है, और पुराने हिसाब किताब भी जो मन के संस्कारों के हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा बन के निरसंकल्प होकर बैठ जाऊं, आप करके देखिए, थोड़ी देर बाद आप जा रहे होंगे परम धाम, लेकिन पहुंच जाएंगे कहीं और, जैसे वो दिवाली के दिन चलाते हैं ना, तो बिगड़ा हुआ तो वहीं आके कभी कभी तो आपके अंदर आ जाता, तो आप देख लीजिए, क्यों कि वो खींचते हैं। तो जो पुराने हिसाब किताब हैं वो हमारे पास किस रूप में आते हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जिसको बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प। आप कभी भी सोचें मैंने फरिश्ता बनना है, ठीक है, आप देखेंगे मन से भी फरिश्ता बनने के अंदर बनेंगे, चलेंगे फरिश्ता बनने, थोड़ी देर बाद व्यर्थ संकल्प आ जाएंगे। चाहे वो पीछे की बातें हों या आगे की बातें हों या फालतू बातें हों या किसी की। अब व्यर्थ संकल्पों में भी दो प्रकार के संकल्प खास आते हैं। एक तो वो आते हैं कि जिन चीज़ों से हमारा लगाव है, हमें पसंद है इस धरती की। मोटे रूप से तो बाबा ने कहा हुआ है सतयुग में कोई खराब चीज़ नहीं होती, ये तो हम मानते हैं ना, सतयुग में कोई खराब चीज़ नहीं होती। लेकिन इसका जो उल्टा है कि कलयुग में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, इसमें फंस जाते हैं कि नहीं नहीं कलयुग में भी तो अच्छा है, सेब कितना अच्छा है, इससे तो ताकत आती है, हैं जी। तो ये गड़बड़ हो जाती है कि बाबा की जितनी मुरलियाँ सुनेंगे बाबा एक साइड का दूसरा साइड बताता है। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि कलयुग में जब कलयुग है तमो प्रधान है। कल परसों के मुरली में भी आया था कि सतयुग की कोई भी चीज़ कलयुग में नहीं हो सकती, क्यों, यह ही तमो प्रधान, सतो प्रधान कैसे आएगा, चाहे शेप उसका वैसा ही होगा, अंदर उसके घुन लगा हुआ होगा। तो मोटे रूप से जिसको कहते हैं बेहद का विराग, कि हम पहले तो दिल में धार लें कि ये दुख की दुनिया है, इसमें टेम्परेरी अल्पकालिक सुख दिखेगा तो धोखा। इसलिए हमको एक तो लगाने वाली जो चीज़ें हैं वो योग में आएंगी आपके सामने। अगर आपको बेहद की विराग वृत्ति होगी कि भले यहाँ अच्छे भोजन जिसको हम कहते हैं अच्छे फल हैं, सैर करना भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन ये सारे साधन हैं। और बाबा ने कहा हुआ है जैसे संगम युग का बताया था कि संगम युग पर तुम सेफ हो, बाहर तुम कलयुग है। तो कई बार कलयुग भी अंदर आ जाता है क्योंकि मन के अंदर कोई छुपा के चीज ले आता है। एक तो ये है, दूसरा है किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर आपके मन में जिसको हम मोटे शब्दों में कह दें घृणा है, यानी आप उसको पसंद नहीं करते, तो वो और भी ज़्यादा कशिश करने वाली चीज़ों से भी ज़्यादा वो आपके रास्ते में बाधा आएगी। जो ही आप योग लगाने बैठेंगे वो व्यक्ति सामने आ जाएगा, जो ही आप बैठेंगे वो सामने आ जाएगा। अगर गलती से आप कहीं बैठे और आपके साथ वाली सीट पर आके सिर्फ वो बैठ जाए तो फिर क्या होता है, कोई फंक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो सारा कुछ भूल के ये कैसे बैठ गया। अच्छा, इतना लगता है जैसे पता नहीं क्या बैठ गया है, कोई कोबरा सांप बैठ गया, तो उसके हट ही नहीं सकता मन, ये कैसे बैठ गया। किसी के कमरे में भी डाल दो, अच्छा तो क्या होता है, तो नींद ही नहीं आती, खाना भी स्वाद नहीं लगता, ये हालत है। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको कहते हैं घृणा करना। घृणा कह लो, ईर्ष्या कर लो, बाबा ने बताया हुआ। अब इसका क्या इलाज करें, क्योंकि जब आप योग लगाएंगे और सब चीज़ सीख के आपकी पूरी तैयारी है, पूरी इच्छा है, बाबा की भट्टी करी है, अव्यक्त वाणी सुनी है, आ जाएगा। तब बाबा कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं इसका पहले ध्यान करना। और बाबा ने हर चीज़ के आसान तरीके बताए हुए हैं। वास्तव में आप जो बाबा की विधि है उसके अनुसार चले तो बिल्कुल आसान है, और हम उसको मुश्किल कर लेते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं एक तो मैं साथ हूँ, अब उसका साथ लेने के लिए हम बैठे हैं और बीच में वो आके खड़ा हो जाता है शनि देवता की तरह, आप हटाओ नहीं हटेगा, 10 बारी कोशिश करो दोबारा आएगा। अच्छा, इसका तरीका बाबा ने बताया हुआ। तब करके बाबा ने कहा कि देखो, बिजी रहना का तो मैंने कहा हुआ, लेकिन किस चीज़ में बिजी रहना। अगर आप सोचिए सारा दिन सुबह से शाम तक आप बिजी किस में रहते हैं, बिजी में बेसिक बात होती संकल्प, हमारा मन कहाँ बिजी है। तो अगर हम सुबह से शाम तक कलयुग की इस दुनिया की या इस जन्म की चीज़ों में बिजी हैं, इस जन्म की सिर्फ, तो आपका सुदर्शन चक्र घूम रहा है। आप आत्मिक स्थिति में है या शारीरिक स्थिति में है? अगर मैं इस जन्म का ही सोचता हूँ तो मैं आत्मा आत्मा कितना भी करूँ हूँ मैं शारीरिक स्थिति में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ही इतना इस जन्म का, सुबह से शाम तक वही ख्याल आ रहे हैं। अच्छा थोड़ी बेटर हो गया तो अभी मैं थोड़ा बेटर हो गया, ये नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको जैसे बाबा ने किया, ख्वाब में भी हमारे, ख्याल में भी हमारे फ्यूचर आना चाहिए। वो तब आ सकता है अगर हम पास्ट की बातों में ना जाएं और वर्तमान जीवन को में आज की बातों में ना जाएं। इसमें जिससे घृणा वगैरह है, बाबा कहता है घृणा का एक संस्कार है। अगर आपके अंदर किसी एक व्यक्ति से घृणा हो गई वो तो खास है, आपके अंदर इसका मतलब हुआ कि प्रेम पूरा नहीं है। हम समझते हैं कि 80% तो प्रेम है, 90% तो प्रेम है, 95% लोगों से मेरा प्रेम है। अगर 5% से नहीं हुआ तो 5% ही तो है। अच्छा अब भगवान कहता है नहीं, प्रेम है तो पूरा प्रेम, परमात्मा प्यार का सागर है, तो खराब से भी जिसको छूना भी मुश्किल हो उससे नफरत करता। बाबा कहता है अगर मैं करता होता तो जिस स्थिति में आपको मैंने बच्चा बनाया था वो देखो, तो मैंने अगर नफरत करता होता तो मैं नहीं बनाता ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। तो प्रेम में नफरत नहीं आ सकती। इसी प्रकार से आप कहें कि दो चार से मैं घृणा करती हूँ या करता हूँ, नहीं, उसके लिए बाबा ने बिजी किस में रहना? तो बाबा ने कहा मैंने बताया हुआ शुभ भावना शुभ कामना ये सब जानते हैं। शुभ अगर हम इसी में प्रैक्टिस में रहें कि मुझे शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और कुछ नहीं करना। भक्ति में भी कहते थे जो करेगा सो पाएगा, सबका भला हो, मुझे क्या लेना है, मैंने तो अपना, मेरा काम है शुभ भावना रखना। सूरज का काम है रोशनी देना, उसने ये नहीं देखना कि डाकू का घर है तो मैं यहाँ रोशनी ना दूँ। तो इसलिए ये सारी जो गड़बड़ है जो खास तौर पे आती है वो है दूसरों व्यर्थ संकल्पों का मुख्य कारण है। वो जो आसक्तियाँ हैं उसको फिर भी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है कि भी मैंने जाना है, ये कलयुग है, अगर मेरा मृत्यु होने लगे कोई मुझे कहे ये चीज़ खा ले मैं खा थोड़ी सकूँगा, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम बिजी रहें कि तेरा भी भला हो, तेरा मेरा काम है तेरा भी भला हो, दूसरा जो मर्जी करे। तो शुभ भावना बाबा, अभी आपने शुभ भावना शुभ कामना की पूरी मुरली सुनी है ना, उसमें बाबा ने कई सारी चीज़ें बताई हैं और मेन बात बताई है कि संकल्प, कि आपके हर आत्मा के पास एक ऐसा पावरफुल सबसे तेज शक्ति है जो साइंस में पास वालों के पास भी नहीं है और ब्राह्मणों के पास वो है अगर वो ठीक तरह यूज़ करें उसको, उसी में सुधार करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि अपनी संकल्प शक्ति को हम एक पावरफुल इतना बना सकते हैं और इतना काम कर सकते हैं उससे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। लोग कहते हैं ईश्वर ने संकल्प रचा और सृष्टि रच दी, संकल्प से सृष्टि पैदा हुई। अब बाबा भी कहते हैं देखो विदेशियों को मैंने संकल्प से आवाहन किया, विदेशी आ गए। तो ब्राह्मणों का संकल्प बहुत पावरफुल है। उस संकल्प शक्ति के अंदर जो व्यर्थ अंदर आ जाता है दो प्रकार का, एक तो ये वाला और एक दूसरे वाला, तो इस वाले खराब वाले में तो शुभ भावना शुभ कामना इसका इलाज है। जब आप सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे कि मेरा काम तो शुभ भावना रखना है, दूसरा कुछ भी करे, तो इसलिए आपको इससे आप बच जाएंगे। कोशिश करके देखें। दूसरा जो है संकल्प के अंदर बाबा ने कहा है एकाग्रता भरो और एकांत पसंद बनो। और उसका सार बताया है कि शांति की शक्ति को जमा करो, क्योंकि हम लोग योगी हैं, साधारण लोग नहीं हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सिंपल है, ये खाना पीना तो दुनिया भी करती है, जानवर भी करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा ने कहा मुझे याद करो बस ना, मेरे याद से मैं शांति का सागर हूँ, आप में शांति आएगी। अच्छा, एक तो मुझे याद करो, दूसरा शुभ संकल्प रखो। तो अगर हम ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आप फरिश्ता की स्टेज को जल्दी से फील कर सकते हैं। और ये हमको अब करना ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं इसकी तैयारी रखनी है। जैसे कोई व्यक्ति रेडी होता है, ट्रेन आ रही है, बिल्कुल रेडी होता कि मेरे आगे जो डब्बा आएगा या जो मेरा डब्बा है उतना ही ध्यान रखता है, तो उसको भूला होता है मेरा घर कहाँ है, मैंने जाना कहाँ है। क्योंकि जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं तो वहाँ तो कंसंट्रेट हो जाता ना। अब ये जो एकाग्र शब्द बाबा ने कहा, एकाग्र हम क्या कोशिश करते हैं कि किसी किसी समय एकाग्र होते हैं, है ना। डॉक्टर भी जब हमें ऑपरेशन करना होता है कहते हैं सांस रोक लो, एक्सरे करना, हम एकाग्र हो जाए। अच्छा आप सांस छोड़ दो, हम कहते शुक्र हुआ। थोड़ी देर में कहता फिर सांस रोको, तो हमारी एकाग्रता इस तरह की है। या तो प्रॉब्लम आ जाए या कोई खास काम करना हो, ये एकाग्रता हमें, वो एकाग्रता नहीं ला सकती। इसलिए एकाग्रता हम इस तरह की रखें कि हर काम में एकाग्र, क्योंकि फिर आप एवर रेडी होंगे। यानी आपने हर काम में, मान लो आप मुरली सुन रहे हैं उसमें एकाग्र, बाबा ने कहा उस वक्त कहो कि योग बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, नहीं भोजन खा रहे हैं तो भोजन में एकाग्र, अगर आप बातचीत करेंगे कर लो, आपको भोजन का ना तो टेस्ट आएगा ना पता लगेगा, और एकाग्रता होगी तो बाबा को याद करके भी खा सकते हैं। स्नान कर रहे हैं तो भी एकाग्र। तो ये एकाग्रता हमारी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, तो हमें बहुत मदद करेगी उस समय एकाग्र होने के लिए जब अपना ध्यान एक तरफ लगाते हैं। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जिसको बाबा कहता है परचिंतन, व्यर्थ संकल्पों की जड़ भी क्या है, तो हम अपना नहीं सोचते, दूसरे का सोचते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ सो चिंतन करो, सो दर्शन घुमाओ, अपना ध्यान रखो। और एक और बात है, हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं यज्ञ के हित में। यज्ञ के हित में कोई दिक्कत हो रही है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई अमृत वेले नहीं आ रहा, कोई कुछ भी कर रहा है जो हमें ठीक नहीं लगता, यज्ञ के नियम के खिलाफ है। परंतु भगवान कहता है ये सबसे बड़ी गलती है। एक तो गलती को देखना और फिर उसको सुधारने की कोशिश करना और भी बड़ी गलती है, क्योंकि भगवान ने कहा हुआ ड्रामा एक्यूरेट है। अब हम एक्यूरेट के अंदर अपने कोशिश करें कि इसको ठीक कर दें। ड्रामा एक्यूरेट के मुताबिक कोई नीचे जा रहा है, अपने कारणों से जा रहा है। अच्छा, अब मैं सोचूं कि नहीं, भगवान उसको सिखा रहा है सीधा हो जा, नहीं हो रहा, अपनी कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये तो यज्ञ के खिलाफ है। तो ये दूसरे को सुधार करने की कोशिश करना वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि वो नहीं सुधरेगा। आप किसी को कह दो तो ऐसे करता, नहीं सुधरेगा। मुस्करा के देखते रहो, ड्रामा एक्यूरेट है, अपना सुधार करें, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। तो इस प्रकार की चीज़ों से अगर हम भिन्न भिन्न तरीके से मोट आसान अपनाएंगे, ये फरिश्ता रूप धारण करके शरीर से काम करवाएं, शुभ भावना शुभ कामना रखें, और व्यर्थ का बहुत ध्यान रखें, जिसमें परचिंतन आता है दूसरे को ठीक करने की या राइट साइड लेने की, कि ये राइट साइड है, ये सच है, इसलिए मैं सच के साथ हूँ। ड्रामा कहता है सच और झूठ दोनों चल रहे हैं, हर उसने फाइनल सच पर ही आ जाना है, पर मैं अपना हिस्सा निभाऊं इससे ज्यादा। ओम शांति।